मरकुस की इंजील बाब 15। और फिलफौर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सब सदरे अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा,
क्या तू यहूदियों का बादशाह है?
उसने जवाब में उससे कहा,
तू खुद कहता है।
और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्जाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा,
तू कुछ जवाब नहीं देता, देख ये तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं।
यीशु ने फिर कुछ जवाब ना दिया, यहाँ तक के पिलातुस ने ताज्जुब किया। और वो ईद पर एक कैदी को, जिसके लिए लोग अर्ज करते थे, उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बरब्बा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी,
जो तेरा दस्तूर है हमारे लिए कर।
पिलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया,
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं?
क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बरब्बा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा,
फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं?
वो फिर चिल्लाए,
उसे सलीब दे।
और पिलातुस ने उनसे कहा,
क्यों, उसने क्या बुराई की है?
वो और भी चिल्लाए,
उसे सलीब दे।
पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बरब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि सलीब दी जाए। और सिपाही उसको उस सहन में ले गए जो परीतुरियून कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए, और उन्होंने उसे अर्गवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे। और वो उसके सिर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सिजदा करते रहे। और जब उसे ठट्टों में उड़ा चुके तो उस पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए। फिर उसे सलीब देने को बाहर ले गए। और शमाऊन नाम एक कुरैनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा के उसकी सलीब उठाए और वो उसे मकामे गुलगुता पर लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है। और मुर मिली हुई मय उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर कुरा डालकर के किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया और उसका इल्जाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ दो डाकू, एक उसकी दहनी और एक उसकी बाईं तरफ मसलूब किए। तब इस मजमून का वो नविश्ता कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ, और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उस पर लांतान करते और कहते थे,
वाह, मकदिस के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले सलीब पर से उतर कर अपने तई बचा।
इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों के साथ मिलकर आपस में ठट्टे से कहते थे,
इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। इसराइल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाए।
और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लामतान करते थे। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया,
एलोही, एलोही, لباش بختنی،
جس کا ترجمہ ہے
اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟
جو پاس کھڑے تھے ان میں سے باز نے یہ سن کر کہا،
دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے،
اور ایک نے دوڑ کر سپنج کو سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا،
ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے اتارنے آتا ہے یا نہیں۔
پھر یسو نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا،
بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔
اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی تھی۔ جب وہ گلیل میں تھا یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھی، اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھی۔ جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا، جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، اریمتیا کا رہنے والا یوسف آیا، جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور اس نے جرات سے پلاتوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی، اور پلاتوس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا،
اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی؟
جب صوبیدار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی، اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی اسے رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا، اور مریم مگدلینی اور یوسیس کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔